एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो, सच कहूं तो, हमारी न्यूज फीड्स में, हमारी बहसों में और दुनिया की राजनीति में हमेशा छाया रहता है, लेकिन जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष की।
बिल्कुल, और ये इतना उलझा हुआ और भावनात्मक टॉपिक है कि इसे सही से समझने के लिए हमें गाइड की जरूरत है।
हाँ।
और इसीलिए आज हम इतिहासकार मार्टिन बंटन की किताब द पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का सहारा ले रहे हैं।
ये किताब एक तरह से इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए हमारा गाइड मैप है।
एकदम सही।
और ये आज जरूरी इसलिए है क्योंकि हम रोज खबरों में सिर्फ आज की घटनाएं देखते हैं। एक हमला हुआ, एक जवाबी कार्रवाई हुई, एक विरोध प्रदर्शन।
हाँ, बस सतह की चीजें।
बिल्कुल, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये किताब हमें उस क्यों की गहराई तक ले जाने का वादा करती है। ये सिर्फ क्या हुआ नहीं बताती, बल्कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे ये समझाती है।
और इस सफर में हमारा गाइड बनने के लिए मार्टिन बंटन मेरे ख्याल से एक बेहतरीन चुनाव है।
हाँ, उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन है वो?
वो कनाडा के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और मिडिल ईस्ट की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके जाने माने एक्सपर्ट हैं।
जो बात मुझे उनके बारे में सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि वो इस क्षेत्र से बाहर के हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
वो ना तो फिलिस्तीनी है, न इजरायली, न अरब, न यहूदी। इससे उन्हें एक बाहरी, एक निष्पक्ष नजरिया मिलता है ना।
बिल्कुल, वो किसी टीम के लिए नहीं खेल रहे, वो बस एक इतिहासकार की तरह तथ्यों को हमारे सामने रख रहे हैं।
और उनकी विशेषज्ञता सिर्फ बाहरी नजरिए तक ही सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अरबी, हिब्रू और तुर्की जैसी भाषाएं जानते हैं।
अच्छा, तो वो मूल दस्तावेज पढ़ सकते हैं।
हाँ, इसका मतलब ये है कि वो दोनों पक्षों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अखबार हैं, जो बहसें हैं, उनको सीधे पढ़ और समझ सकते हैं। उन्हें किसी के अनुवाद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
और यही चीज उनकी किताब को इतना संतुलित और भरोसेमंद बनाती है।
तो चलिए सीधे किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं। बंटन की किताब की सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या है?
मेरे लिए तो ये थी कि वो उस पूरी धारणा को ही तोड़ देते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोग यकीन करते हैं। हम इसे हजारों साल पुरानी यहूदी मुस्लिम लड़ाई समझते हैं ना।
हाँ, और बंटन इसी पर सबसे पहले चोट करते हैं। वो कहते हैं कि ये धारणा ही गलत है।
ये कोई प्राचीन धार्मिक झगड़ा है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, यह एक पूरी तरह से आधुनिक, मुश्किल से आप कह सकती हैं 150 साल पुरानी राजनीतिक लड़ाई है।
जमीन के एक ही टुकड़े के लिए।
हाँ, जमीन के एक ही टुकड़े के लिए दो नए राष्ट्रवादों का टकराव, एक तरफ यहूदी ज़ालोनिवाद और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद।
और ये किताब कोई जादुई समाधान देने का दावा भी नहीं करती। इसका मकसद बहुत साफ है।
क्या है मकसद?
ये समझाना कि शतरंज की ये बिसात बिछी कैसे, कौन से मोहरे कब और क्यों चले गए। ये हमें ओटोमन साम्राज्य के आखिरी दिनों से आज तक की एक यात्रा पर ले जाती है, ताकि हम हर मोड़ के पीछे की वजह और उसके असर को समझ सकें।
तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बंटन हमें ओटोमन साम्राज्य के दौर में ले जाते हैं। उस वक्त क्या हो रहा था?
उस वक्त फिलिस्तीन एक बहुत ही मिलाजुला समाज था। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सदियों से एक ही शासन के तहत साथ रह रहे थे।
तो मतलब वो संघर्ष नहीं था जो आज हम देखते हैं?
नहीं, तनाव थे लेकिन वैसा संघर्ष नहीं था। असली टकराव तब शुरू हुआ जब यूरोप में यहूदियों के बीच ज़ायोनीवाद का विचार पनपा।
जो अपने लिए एक राष्ट्रीय घर चाहते थे।
बिल्कुल, और ठीक उसी समय अरब दुनिया में भी अपनी पहचान और आजादी को लेकर राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी। तो दो लहरें एक साथ उठीं।
और फिर आता है पहला विश्व युद्ध और ब्रिटेन की एंट्री।
सच कहूं तो जब मैं ये हिस्सा पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है।
क्यों?
ब्रिटेन ने एक ही समय में तीन अलग अलग, एक दूसरे से पूरी तरह से उलट वादे किए। ये दिमाग चकरा देने वाली बात है।
अच्छा, कौन से तीन वादे थे वो?
पहला, उन्होंने अरबों से कहा कि अगर वे ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे तो उन्हें आजादी दी जाएगी।
ठीक है।
दूसरा, उन्होंने खुफिया तौर पर फ्रांस के साथ साइक्स पीकॉट समझौता किया, जिसमें उन्होंने मध्य पूर्व को आपस में बांटने का प्लान बना लिया था।
मतलब अरबों को धोखा दिया।
हाँ। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ, वो था 1917 का बैल्फोर डिक्लेरेशन।
हाँ, बैल्फोर डिक्लेरेशन, ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
क्या था ये?
इस एक दस्तावेज में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया, बर्टन के मुताबिक इसी एक घोषणा ने आने वाले 100 साल के संघर्ष की नींव रख दी।
मतलब इसने एक ही जमीन पर दो समूहों को ऐसी उम्मीदें दे दी जो एक साथ पूरी हो ही नहीं सकती थी।
बिल्कुल, और इस नींव पर संघर्ष की पहली बड़ी इमारत खड़ी हुई 1948 में।
1948, दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की भयानक तबाही के बाद दुनिया की सहानुभूति यहूदियों के साथ थी। तब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव रखा
और यहूदी नेतृत्व ने इसे मान लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
और इसके बाद जो युद्ध हुआ उसने दो बिल्कुल अलग सच और दो बिल्कुल अलग कहानियां पैदा की।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
इसराइलियों के लिए ये उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, हजारों साल बाद अपने देश का दोबारा जन्म।
और फिलिस्तीनियों के लिए?
फिलिस्तीनियों के लिए ये नकबा था, यानी महाविनाश, एक ऐसी तबाही जिसमें 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए।
और बर्टन इसी को संघर्ष का मूल पाप कहते हैं, है ना?
हाँ, वो कहते हैं कि ये शरणार्थियों की समस्या एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरा और हर पीढ़ी के साथ नए जख्म देता रहता है।
एक तरफ एक देश बन गया और दूसरी तरफ एक पूरी कौम बेघर हो गई।
संघर्ष का असली डीएनए आप कह सकते हैं यहीं से बना।
तो 1948 में एक तरफ इसराइल एक देश बन गया और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। ये स्थिति लगभग 20 साल तक बनी रही, लेकिन जमीन के नीचे तनाव लगातार बढ़ रहा था।
और 1967 में ये ज्वालामुखी फटा एक ऐसे युद्ध के रूप में जिसने संघर्ष का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया।
1967 का 6 दिवसीय युद्ध। इस युद्ध में इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया।
और बर्टन समझाते हैं कि इसने संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी।
कैसे बदल दी?
अब यह लड़ाई सिर्फ इसराइल के अस्तित्व की नहीं रही, अब यह सैन्य कब्जे का संघर्ष बन गया।
अच्छा, क्योंकि अब लाखों फिलिस्तीनी सीधे इसराइली शासन के अधीन आ गए थे।
बिल्कुल, और यहीं से शांति के लिए जमीन यानी लैंड फॉर पीस का फॉर्मूला निकला कि अगर अरब देश इसराइल को मान्यता दें और शांति स्थापित करें तो इसराइल कब्जे वाली जमीन वापस कर देगा।
और ये फॉर्मूला आज भी कूटनीति का आधार है, भले ही सफल न हुआ हो।
हाँ,
और फिर 90 के दशक में जब ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा ओस्लो समझौते हुए,
मुझे याद है वो तस्वीरें, व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन के साथ इसराइली प्रधानमंत्री यिचखाक रबिन और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात हाथ मिला रहे थे।
दुनिया भर में जश्न का माहौल था, ऐसा लगा कि बस अब समाधान मिल ही गया।
तो फिर इतना बड़ा मौका हाथ से निकल कैसे गया, क्या हुआ था?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बंटन कहते हैं कि इसका जवाब सिर्फ नेताओं में नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद हकीकत में छिपा है।
मतलब?
देखिए, ओस्लो प्रक्रिया कई वजहों से नाकाम हुई। पहली, कब्जे वाले इलाकों में इजरायली बस्तियों का निर्माण नहीं रुका जिससे फिलिस्तीनियों का भरोसा टूट गया,
और दूसरी तरफ हिंसा भी बढ़ गई।
हाँ, दोनों तरफ के जो चरमपंथी थे उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। हमास ने आत्मघाती हमले किए और एक यहूदी चरमपंथी ने शांति की कोशिश कर रहे प्रधानमंत्री रबिन की ही हत्या कर दी।
और शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सबसे मुश्किल मुद्दे थे,
जैसे यरूशलम का दर्जा क्या होगा और 1948 के शरणार्थियों का क्या होगा।
हाँ, उन मुद्दों को बाद के लिए टाल दिया गया और उस बाद पर कभी सहमति बनी नहीं पाई।
नेता कागज पर दस्तखत तो कर रहे थे लेकिन दोनों समाज उस समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
और आज 21वीं सदी में हम उसी नाकामी का नतीजा देख रहे हैं, शांति प्रक्रिया का पूरी तरह बिखर जाना, गाजा पर हमास का नियंत्रण, वेस्ट बैंक को अलग करती दीवार
और दो राज्य समाधान की उम्मीद का लगभग मर जाना। ये आज की एक बहुत जटिल और निराशाजनक तस्वीर है।
इस पूरी ऐतिहासिक कहानी से कुछ बहुत बड़े सबक निकलते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, बल्टन की किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि ये एक आधुनिक राजनीतिक संघर्ष है, कोई प्राचीन धार्मिक लड़ाई नहीं।
इसको हिंदू मुस्लिम या यहूदी मुस्लिम के चश्मे से देखना इसकी असलियत को नजरअंदाज करना है।
बिल्कुल, ये जमीन, पहचान और आत्मनिर्णय का संघर्ष है।
दूसरा बड़ा सबक है बाहरी शक्तियों की भूमिका।
हाँ, ये संघर्ष सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच का नहीं है, ब्रिटेन ने अपने विरोधाभासी वादों से इसके बीज बोए
और बाद में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने हितों के लिए इसे और उलझा दिया।
बाहरी ताकतों ने हमेशा इस आग को बुझाने के बजाय हवा देने का काम किया है।
और एक तीसरा विषय जिसे समझना शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, वो है दो प्रतिस्पर्धी लेकिन अपनी अपनी जगह जायज राष्ट्रीय कहानियाँ।
ये बहुत अच्छे से बंटन दिखाते हैं कि यहूदी लोगों के लिए ज़ायोनीवाद सदियों के जुल्म, भेदभाव और आखिर में होलोकॉस्ट जैसी भयानक तबाही से बचने का एक वास्तविक आंदोलन था। एक सुरक्षित घर की उनकी चाह बिल्कुल जायज थी।
और ठीक उसी वक्त फिलिस्तीनियों की कहानी भी उतनी ही जायज है। वो सदियों से उस जमीन पर रह रहे थे जिस पर एक नया देश बनाया गया।
उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को नजरअंदाज कर दिया गया।
अपनी राष्ट्रीय पहचान और सम्मान की उनकी आकांक्षा भी उतनी ही जायज है। इस संघर्ष की ट्रेजेडी यही है कि ये दो जायज कहानियां एक ही जमीन पर टकरा गई।
हाँ, और बंटन की किताब का एक विचार मुझे हमेशा याद रहता है। इस संघर्ष की ट्रेजेडी ये नहीं है कि एक पक्ष सही और दूसरा गलत, बल्कि ये है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं।
ये लाइन हमें किसी एक को हीरो और दूसरे को विलन बनाने की हमारी आदत से बाहर निकलने पर मजबूर करती है।
एकदम। और एक आखिरी थीम जो हर दौर में नजर आती है वो है शक्ति का भारी असंतुलन।
मतलब एक तरफ एक संगठित ताकतवर परमाणु सक्षम देश है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का समर्थन हासिल है,
और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ राज्यहीन समाज है।
और ये असंतुलन हर चीज पर असर डालता है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या बातचीत की मेज।
बिल्कुल। और इन सब बातों का असर सिर्फ खबरों तक नहीं है, इस किताब की सीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आ सकती है।
जैसे कि
सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमें मीडिया को आलोचनात्मक नजर से देखना सिखाती है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब अगली बार जब फोन पर इस संघर्ष से जुड़ी कोई हेडलाइन आए तो तुरंत किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए।
जैसे
इस खबर में किसका नजरिया दिखाया जा रहा है, क्या किसी का पक्ष छोड़ा जा रहा है?
हाँ, या क्या इस एक घटना के पीछे का लंबा इतिहास बताया गया है या सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है?
ये हमें एक बेहतर और ज्यादा जागरूक पाठक बनाता है।
और दूसरी बात, ये हमें किसी भी मुश्किल विषय पर बेहतर बातचीत करना सिखाता है,
चाहे वो ये संघर्ष हो या हमारे अपने देश का कोई विवादित मुद्दा।
अक्सर हमारी कोशिश बहस जीतने की होती है ना? अपनी बात को सही साबित करने की।
हाँ, लेकिन ये किताब सिखाती है कि जीतने के बजाय दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है।
ये पूछना कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, उनके डर, उनकी उम्मीदों को समझना।
सोचकर देखिए, अगर हम अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये तरीका अपना लें तो कितनी बहसें सार्थक बातचीत में बदल सकती हैं।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि जटिल समस्याओं के सरल जवाब नहीं होते। अच्छा बनाम बुरा या सही बनाम गलत का चश्मा यहाँ काम नहीं करता। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इतिहास की परतों को, दोनों पक्षों की कहानियों को और उनके जख्मों को समझना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में किसी का पक्ष लेना अक्सर अज्ञानता की निशानी होता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ऐतिहासिक कहानियां या जो नैरेटिव्स होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं।
हाँ,
दोनों पक्ष अपने अतीत की जो कहानी खुद को और दुनिया को सुनाते हैं वही उनके आज के कामों को सही ठहराती है।
एक के लिए जो स्वतंत्रता दिवस है वही दूसरे के लिए महाविनाश का दिन है।
बिल्कुल। इस गतिशीलता को समझना ही इस किताब का असली तोहफा है। भले ही ये कोई आसान समाधान न दे, ये हमें सिखाती है कि शायद शांति की तरफ पहला कदम एक दूसरे के हथियारों को नहीं बल्कि एक दूसरे की कहानियों को सुनना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।